शांति। मीठे बाबा ने सदा सुखी, सदा शांत, सदा आनंदमय रहने का वरदान दिया है। दिया है, खुशी तब होती है जब कुछ प्राप्त होता है। बिना प्राप्ति के खुशी नहीं होती। बाबा ने हमारा भंडार भर दिया है इतना प्यार की वर्षा हम पर की है, जो हम सभी बच्चे बाबा का शुक्रिया बाबा करते ही रहते हैं। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी, एक दिन बाबा ने कहा, मैं रो नहीं रही थी पर बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुमको मालूम है रोने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते, बाबा ने मुझे कहा। और मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने वरदान दे दिया। मैं अपनी लाइफ में कभी रोई नहीं समझ गए? कोई बात आई, छोटी छोटी बातों पर रोने की आदत होती है। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश की कि मैं ना रोऊं। मैं इसलिए वरदान कहती हूं, बाबा ने मुझे कहा, बच्ची तुम्हें मालूम है रोने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते। और मैं अपनी लाइफ में कभी रोई नहीं। मैं दादियों को देखती हूं, कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी परिस्थितियां आई, उन्होंने आंख से आंसू नहीं बहाए। आंसू आंख से आया तो बाबा के प्यार में आया, नैन गीले हुए प्रभु पे प्रेम में गीले हुए। मैंने एक जगह चार लाइन पढ़ी थी, आंसू आंखों के घर आया एक मेहमान है। आपके घर में जगह थोड़ी और मेहमान ज्यादा आ गए, आप क्या करेंगे हाँ जमीन पर सुला देंगे, अपना कमरा दे देंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं निकालेंगे। मतलब समझ गए? आंसू आंखों के घर आया एक मेहमान है, शर्त यह है इसमें ही समा जाए, वरना आंखों का अपमान है। अगर बाहर निकाल दिया तो आपकी शिकायत करेगा वो। और आंखों में आए भी तो बाबा के प्यार में, प्रभु प्रेम में आए, आनंद में आए, खुशी में आए, दुख में नहीं। बाबा ने वरदान दिया है, बच्चे कुछ भी होगा तुम्हें दुख नहीं होगा, ना दुख दो ना दुख लो, किसी को भी दुख नहीं देना है, बदले की भावना नहीं रखनी है, बदला नहीं लेना है किसी से। कौन सा स्लोगन है? बदला ना लो, आगे बदल कर दिखाओ। और एक दूसरा स्लोगन है, रीस मत करो, रेस करो। भाई किसको नींद तो नहीं आ रही है, रिपीट करो, बाबा ने कहा है दुख ना दो ना दुख लो। हम देखते हैं दुख देते तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया या हमारी बात पूरी नहीं हुई, हमारी बात नहीं मानी गई, किसी ने हमारी शिकायत की, किसी ने हमारी निंदा की, मन दुखी हो जाएगा। बाबा ने कहा ज्ञानी आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान। हमें मालूम है अंत तक निंदा होती रहेगी। हम अच्छा काम करेंगे कोई ना कोई शिकायत करेगा, अपमान होता रहेगा, हम जो काम करेंगे उसे विघ्न बाधाएं आती रहेगी। ये सब कुछ अंत तक होगा। बाबा ने कहा है कि तुम मेरा बन गए अब विघ्न नहीं आएंगे, अब बाधाएं नहीं आएगी। बाबा ने कहा है कहा आएंगे और ज्यादा आएंगे। तुम बच्चे युद्ध के मैदान में खड़े हो, विपरीत परिस्थितियां विपरीत बातें आएगी लेकिन तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम हर परिस्थिति में समान रहने की शक्ति तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम जान गए हो ये सृष्टि एक नाटक है, एक ड्रामा की स्टेज है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। किसी का पार्ट है दुख देने का, वो देगा, उसका कर्म उसका फल उसके साथ। मुझे केवल सुख देना है, मेरी वाणी से मेरे संकल्पों से मेरे व्यवहार से उमंग उत्साह का वातावरण बनता रहे, खुशियां बरसती रहें, मन भी खुश चेहरे पर भी खुशी बनी रहे। हम खुश रहेंगे तभी दूसरे को खुशी मिलेगी। अगर हम चाहते हैं किसी को खुशी दें तो उसका एक ही तरीका है, हम खुशी से भरपूर हो जाएं। बाबा ने कहा अपरम अपार खुशी का पारी खुशी, बेहद खुशी, हमारी दृष्टि अपने कर्मों पर है दूसरे के कर्मों पर नहीं। आज दूसरा व्यक्ति गलतियां करता है और हम उसको याद रखते हैं, हमारे मन में चलता रहता है इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया। एक एक व्यक्ति की फाइल है हमारे ब्रेन में, है ना, कब से उसने क्या क्या किया पूरी पूरी फाइल भरी हुई है। अब मोबाइल सबके हाथ में है, सबको डिलीट करना आ गया है। अब पूरी फाइल डिलीट करो। अगर दूसरे की खामियों को याद रखते हैं, सोचते रहते हैं, औरों को सुनाते रहते हैं तो मन में एक विचार आता है, कर्म दूसरे का उठाकर हम घूम रहे हैं, तो जो दूसरे का बोझा उठा के घूमता है उसको हम कुली कहते हैं। हम कुली हैं क्या? गलतियां दूसरा कर रहा है, बोझा हम उठा के घूम रहे हैं। जो करेगा आगे, जो करेगा सो, हम क्यों सोचें? मुझे अपने कर्म का फल पाना है इसलिए मुझे अपने कर्मों के बारे में सोचना है। हमारा अनुभव कहता है जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत लकी हैं, तो बोलने से पहले आपके चेहरे पर खुशी आती है। बाबा ने इतना हमको स्वमान में रहना सिखा दिया, इतना औरों को सम्मान देना सिखा दिया कि याद करके भी मन में खुशी आती है। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, क्या हूं? विशेष आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली हूं। पूरी लिस्ट लिखो और अपने आप को अपनी महिमा सुनाओ। इसको कहते हैं स्वदर्शन। बाबा ने पांच स्वरूप याद करने के लिए दिया है, मालूम है सभी को? मालूम है अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। ये पांच स्वरूप किसके हैं? बाबा के नहीं है पांच स्वरूप। किसके स्वरूप है? हमारे। और क्या कहा? बार बार इसको याद करो, बार बार स्वदर्शन करो, बार बार स्वदर्शन करो। कभी किया है? कभी किया है स्वदर्शन? अनादि स्वरूप देखो और खुश हो जाओ, ये मेरा असली रूप है। मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं। मुझे कोई सुखी करेगा? मुझे सुखी रहना है। मेरी आदत हो जाए सुखी रहने की, मेरी आदत हो जाए खुश रहने की। मेरा सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति किसी पर डिपेंड नहीं करता। मुझे कोई देगा? मुझे कोई देगा? मुझे कोई खुश रखेगा? मुझे कोई सुखी रखेगा? कोई आनंद में रखेगा? कोई मौज में रखेगा? मुझे खुद रहना है, मेरी जिम्मेवारी है। हम शांत तब रह सकते हैं, अपने पार्ट को देखें, अपनी विशेषताओं को देखें। बाबा ने जो मेरी विशेषताएं देखी हैं, वो हम अपनी विशेषताओं को देखें। मन शांत, आनंद कब आएगा? अब याद रखना, पंच तत्वों से सृष्टि बनी है, है ना? पंच तत्वों से शरीर बना है, लेकिन पंच तत्वों में किसी तत्व का गुण आनंद नहीं है। है आकाश का गुण आनंद है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, किसी का भी गुण आनंद नहीं है। आनंद आत्मा का गुण है। अगर हम आनंदित हैं तो खुले बगीचे में जाकर खुले आकाश को देखकर बड़ा आनंद आता है। सनराइज होता है, बड़ा आनंद आता है। सनसेट होता है, देखने जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। आनंद सनसेट में नहीं है, आनंद सनराइज में नहीं है, आनंद मेरी स्थिति में है। मैं आनंदित हूं इसलिए मुझे आनंद आ रहा है। कुछ खा के आनंद आता है, फल में, मिठाई में आनंद नहीं है। मैं आनंदित हूं, मुझे खा के आनंद आया। जिसका मन दुखी होता है उसको बढ़िया से बढ़िया पकवान खिलाओ, वो नहीं खाता है। कहता है नहीं, मेरा मन दुखी है, मैं नहीं खा सकता। उसको खा के आनंद नहीं आता है। दुनिया में लोग आनंद के लिए नशा खाते हैं, शराब पी लेते, नशा खा लेते, कहते हैं बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। शराब पीने के बाद, नशा खाने के बाद क्या होता है? सब कुछ भूल जाता है। मैं कौन हूं, कहां हूं, अपनी बीती हुई बातें, अपने आस पास रहने वाले लोगों की बातें सब कुछ भूल जाता है। जब सब कोई भूल जाता है तो उसको आनंद आता है। बाबा ने हमें क्या कहा, क्या कहा, कोई बीती हुई बात को याद नहीं करो, बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगा दो, जो हुआ क्या याद करें, होना ही था, कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, कल्प बाद भी ऐसे ही होगा। आज मन रंज करेंगे तो कल्प बाद भी मन रंज करना पड़ेगा। ये नाटक है, नाटक आरती है जो टिकता नहीं, आया और गया, आया और गया, आया और गया। समय आता है और चला जाता है, एक एक पल बीत जाता है। खुशी तब गायब होती है जब बीते हुए समय को हम पकड़ लेते हैं, बीते हुए समय की बातों को पकड़ लेते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार दूसरों को सुनाते हैं। निंदा भी साधारण चीज नहीं है, उसमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस मिलता है, तब ना सारे काम छोड़ के बैठ के करते हैं। एक कहानी हमने सुनी थी, एक राजा था, उसने अपने राज्य में बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया दूर दूर से भोजन करने के लिए। एक रसोईया जो खुले वातावरण में भोजन बना रहा था, उसे बहुत भावना से प्रेम से भोजन बनाया। उसी समय आकाश से एक चील जा रही थी, चील के मुंह में एक सांप था, सांप के मुंह से विष की बूंदे टपक रही थी, वो एक बूंद उस भोजन में गिर गई, क्योंकि खुले आकाश के नीचे बना रहा था। रसोईये को पता नहीं चला, जब सबने भोजन किया सब मर गए। धर्मराज के दरबार में मीटिंग हुई, इसमें दोष किसका है, राजा का दोष है, राजा का दोष है, नहीं, राजा ने तो भावना से सबको आमंत्रित किया। रसोईये का दोष है, उसने बड़े प्रेम से भाव से बनाया। चील का दोष है, सांप का दोष है, कोई दोषी नहीं मिला। किसको सजा दी जाए, अच्छा थोड़े दिन के बाद फिर मीटिंग करेंगे। कुछ समय बीता, उस राज्य में कुछ संत आए, वो जब उस शहर से गुजर रहे थे, एक माता जी से उन्होंने पूछा कि राजा के दरबार में जाने का रास्ता कौन सा है। उस माता जी ने कहा, तुम राजा के दरबार में नहीं जाना, राजा अपने अतिथियों को बुला के मार डालता है, समझ गए। अब धर्मराज के दरबार में फिर मीटिंग हुई, दोषी कौन, वो माता जी। क्यों उसके ऊपर दोष आया, उसने निंदा करके आनंद लिया, उसको आनंद आया। गलत काम करके जब मनुष्य आनंदित होता है तब वो दुखी भी होता है और गलत कर्म भी करता है। इसीलिए हमें बाबा ने कहा है, बच्चे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये देखना बंद कर दो। अगर देखना ही है, क्या देखो, अपना अनादि स्वरूप और आपका अनादि स्वरूप एक ही है, उसी नजर से देखो औरों को। मेरा आदि स्वरूप मैं देवता हूं, आप भी देवता हो, उसी नजर से देखो। मेरा पूज्य स्वरूप आपका पूज्य स्वरूप एक ही है, उसी नजर से देखो। अपने को देखना स्वमान, दूसरे को देखना सम्मान, यही है ना। ये रिहर्सल करो, ये प्रैक्टिस करो, क्या होगा, खामियां सब में है, अपने में भी है, लेकिन हम उसका चिंतन ना करें। हमें केवल गुणों से काम है। हर आत्मा विशेष आत्मा है जो हमारे संपर्क में आई है, वो हर एक आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है जो हमारे संपर्क में आई है। गुण दर्शन ही खुशी प्रदान कर सकता है, खुशियों से झोली भर सकता है। पाया ही पाया देखते रहें, सुबह से रात्रि तक, सुबह सुबह उठे, बाबा से मीठी मुलाकात हुई, बाबा से वरदान मिला, एक घंटा बाबा के पास बैठे, बहुत सुख मिला, सुख के सागर से सुख मिला, बहुत शक्ति मिली, फिर मुरली सुनी, मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, लाडले बच्चे, अनेक वरदानों से सजी हुई मुरली सुनी, बुद्धि में भंडार भर गया वरदानों का, शुक्रिया बाबा। फिर कर्म क्षेत्र पर आए, बाबा ने कहा है भोजन बनाओ बाबा के लिए, भोजन बनाओ इसके लिए उसके लिए, किसी देहधारी को याद नहीं करो, बाबा के लिए भोजन बनाओ, प्यार से भोग बनाओ, प्यार से भोग लगाओ। वो जितना समय बनाया, जितना समय औरों को खिलाया, उतना समय बाबा साथ रहा, बाबा की याद रही, वो समय कितना खुशनुमा बीता। बाबा को भोजन खिलाना है इसलिए ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, ये भी बनाऊं, अच्छी तरह बनाऊं, एक उमंग आया, एक उत्साह आया। जब बाबा याद रहा तो इतनी खुशी हुई। हमने दादियों को देखा है भोग बनाने में बहुत भावना, मम्मा से बाबा भोग बनवाते थे, मम्मा भोग बनाती थी और बीच में भोग रखते थे, सामने संदेशी बैठती थी, इधर बाबा बैठते थे, इधर मम्मा बैठती थी, बड़ी भावना से भोग लगाते देखा है। तो एक एक पल प्राप्तियों का पल है, हमें याद आता है सुबह कितना अच्छा बीता, फिर कितना ज्ञान खजाना बुद्धि में आया। फिर भोजन के समय कितना प्यार से बनाया, खिलाया। कर्म क्षेत्र पर आए, बाबा साथ रहा। दादी के बोल हमें हमेशा याद रहते हैं। सारे दिन में कोई समय ऐसा नहीं होता जब बाबा मेरे सामने ना हो। सारा दिन बाबा साथ है, सारा दिन बाबा को देख रही है। मुझे सौभाग्य मिला दादी के साथ रहने का। मम्मा अव्यक्त हुई 65 में, जून में, मैं जुलाई में मधुबन आई। बाबा ने मेरे से पूछा, बच्ची बॉम्बे देखी है? मैं कहा नहीं, जाओ बॉम्बे घूम कर आओ। दूसरे दिन बाबा ने मुझे बॉम्बे भेज दिया। मेरी उम्र कितनी थी, 17 वर्ष की, क्योंकि मैं बॉम्बे जब गई तो मुझे कई लोग कहते थे, रानी अभी तो तुम 18 वर्ष की भी नहीं हुई हो, कोई कोई बोलते थे, इसलिए मुझे याद है। बाबा ने मुझे घूमने भेजा, लेकिन मेरी छोटीपन की उम्र से मुझे घूमने का शौक नहीं था, योग में बैठने का शौक, मुरली सुनने का शौक, ज्ञान का मनन चिंतन करने की बहुत प्रबल इच्छा। जैसे दादियां एकदम घंटा दो घंटा चिंतन करती हैं, मैं भी करूं। अंदर में एक प्रबल इच्छा, मैं ऐसा बन जाऊं कि मुझे जरा भी क्रोध नहीं आए। बहुत अंतर इच्छा, मुझे ऐसा बन जाना है कोई कुछ भी करे मुझे गुस्सा नहीं आए। कैसे नहीं आएगा वो मैं बैठ के लिखती थी, क्या क्या याद करें जो गुस्सा नहीं आए, वो बैठ करके लिख कर तैयार किया मैंने। पहले एक लिस्ट बनाई, किन बातों से गुस्सा आता है, बुरा लगता है, फिर क्या याद करें उस टाइम जो उनका व्यवहार वैसा ही रहे लेकिन मेरी सोच बदल जाए। समझ गए, दूसरा वैसा ही रहे लेकिन मैं बदल जाऊं। इस परिस्थिति में ये सोचे, इस पर वो बैठ कर तैयार किया, लिख कर तैयार किया। ऐसे ऐसे अपने पुरुषार्थ का भाव सदा जगा रहा। अब बाबा ने मुझे बॉम्बे घूमने के लिए भेजा, दादी मुझे हर जगह क्लास कराने के लिए भेजती थी और उनको डायरेक्शन देती थी, इसको वहां नजदीक ये जगह घुमा के आना। मैं हर जगह चली जाती थी, क्यों, मुझे बाबा ने कहा देख के आओ। दुनिया में कोई आकर्षण नहीं है, बाबा ने कहा देख लो, दुनिया भी देख लो। जहां दादी भेजती थी मैं जली जाती थी, लेकिन ऐसे देखती थी कि बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझे दिखा रहे हैं, बच्चे यही दुनिया है, इसी के पर दुनिया एकदम सीधा है। कुछ है ही नहीं। 20-25 दिन के बाद बाबा का पत्र आया, बच्ची बाप बॉम्बे में रह के ही सेवा करो, बाबा की प्रेरणा है। आज बाबा का पत्र आया, दूसरे दिन दादी ने निर्मला दीदी को, जो कांदेवली से आती थी, बहुत दूर था, जहां सेंटर में हम दादी के साथ रहते थे बहुत दूर था, 1 घंटा ट्रेन और फिर मैं समझती हूँ आधा पौना घंटा बस, उसके बाद उस सेंटर में पहुंचते थे। दादी ने कहा इसको अपने साथ ले जाओ, पास बनवा देना, ये वहां क्लास कराएगी, इसके बाद इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मेरे से नहीं पूछा तुम अकेली आ जाओगी, क्योंकि मैं छोटी थी और कभी कहीं अकेली गई नहीं थी, ना लौकी घर से किसी ने कभी अकेले भेजा था, ना सेंटर से कभी दीदी ने अकेले भेजा था। और दादी मेरे से नहीं पूछ रही है, उनको कह रही है पास बनवा देना, साथ ले जाना, फिर इसको ट्रेन में बिठा देना, ये आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, मुझे भेजा किसने। अगर मैं कहूंगी कि मैं अकेली कैसे आऊं, कहेंगे बाबा ने किसको भेजा है। मैं वहां गई, बहुत लोग थे, लगभग 200 लोग होंगे क्लास हॉल में बैठे हुए। मैं 2 घंटा क्लास कराया, उसके बाद उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठा दिया। अब मैं बाबा देख रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं बड़ा अच्छा अनुभव किया। मैं देख रही हूं बाबा मेरे साथ बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा, हाँ साकार में। मैं ट्रेन में बैठी हूं, मेरी 7 सीट पर बाबा बैठे हैं, मैं बहुत हंस रही हूं, बाबा आपने तो घूमने भेजा था। हाँ, अब रोज आने और जाने की सेवा दिया है, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आपको मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आना है और क्लास भी आपको ही कराना है। मैं बहुत मीठी मीठी बातें हंस हंस के बाबा से करती रही 1 घंटा तक। मैं एक सेकंड भी बाबा को भूली नहीं, मैं बाबा को देखती रही, बातें करती रही। और जब मैं वहां से बाहर निकली, मैं कभी अकेली बस में चढ़ी नहीं थी, नंबर मुझे बता दिया था बस का। फिर मैं उस बस में बैठी, मैं वहां पहुंची, दादी गैलरी में खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी, भेज तो दिया था। जब मैं वापिस पहुंची, मैं देख रही हूँ बस में भी बाबा मेरे साथ बैठा है, सीढ़ी चढ़ रही हूँ बाबा मेरे साथ साथ सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जब मैं वहां पहुंची, क्लास खत्म हो गई थी, लास्ट गीत बज रहा था, मैं सीधी क्लास में चली गई। अब वो 3 मिनट का जो गीत बजा और जो मेरी स्थिति थी बहुत अच्छी, ऐसा आनंद, इतनी शक्ति, मैंने पहले इतना अनुभव नहीं किया था जितना उस दिन किया। मैंने अनुभव किया सिर्फ जो आज्ञा मिलती जाए करते जाओ, बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। मैं रोज जाती थी, मैं समझती हूँ 9-10 महीना तो मैं गई हूँ रोज। फिर मुझे वहां का क्लाइमेट सूट नहीं किया, मुझे दमा हो गया। बाबा आए, बाबा को पता लगा कि डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा, फिर बाबा ने मुझे वहां से भेजा, नहीं बच्ची तुम ईस्टर्न जोन में जाओ, वहां ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा, तो मैंने देखा बाबा की आज्ञा पालन करो, फिर बाबा की नजर, बच्ची की तबीयत कैसी है, बच्ची कैसे है, क्या कर रही है, किस स्थिति में है, बाबा की पूरी नजर। और वो नजर बाबा की आज भी है, ऐसा अनुभव होता है। ये नहीं बाबा वतन में है तो आज बाबा की नजर नहीं है, आज भी बाबा की नजर है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं। सिर्फ हमें आज्ञाकारी बनने की जरूरत है, बाबा के एक एक महावाक्य को जीवन में लाने की जरूरत है। मैं जब बॉम्बे गई, उसके पहले बाबा की मुरली चली, मुरली रक्षाबंधन के विषय पर थी। मुरली पूरी होने के बाद बाबा ने मेरी तरफ देखा, कहा बच्ची आज की मुरली को भाषण की तरह लिखो, लिख के 10 बजे बाबा के कमरे में आना। उसके पहले मैंने कभी लिखा नहीं था, मैंने बड़े पेज लिए, भाषण की भूमिका बनाते हुए बाबा की मुरली की सारी पॉइंट्स मैं लिखते हुए मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने अपने पास गद्दी पर बिठाया और मुझे कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने बाबा को पढ़कर सुनाया, वो शब्द जो मैंने लिखे थे बाबा को अच्छे लग रहे थे। बच्ची किसी से पूछ कर लिखा है? लेकिन नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है, अच्छा लिखा है। मैं बोल रही थी, मेरे बोलने का जो ढंग है इसकी भी बाबा महिमा कर रहे थे, अच्छा बोल रही है, अच्छा पढ़ रही है। दूसरे दिन फिर बाबा की मुरली चली, विषय यही था रक्षाबंधन का। फिर बाबा ने मेरी तरफ देखा, बच्ची आज भी, आज जो मुरली चली है इसको भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो दूसरे दिन फिर मैंने लिखा दूसरे दिन की पॉइंट्स, और फिर मैं बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने फिर कहा पढ़कर सुनाओ, फिर कहा कल का और आज का दोनों दिन का पढ़ के सुनाओ। देखो कितना टाइम दिया बाबा ने। मैंने पढ़कर सुनाया, बाबा ने कहा बच्ची आज रात्रि क्लास में तुम भाषण करो, बाबा आके सुनेंगे। बाबा ऐसे सेवा में नहीं भेजेगा ना, पहले बाबा ने जान लिया है ये बच्ची बोल सकती है कि नहीं, सोच सकती है कि नहीं, जो आज्ञा मिले उसका पालन कर सकती है या नहीं, पहले बाबा ने टेस्ट कर लिया, समझ गए? हाँ, भाव पहले टेस्ट कर लेता है, ये आज्ञा पालन करने वाला बच्चा है, उसी में पास होना है। फिर मैंने रात्रि क्लास में भाषण किया, बाबा ने हिस्ट्री हॉल में बाहर गैलरी में आते जाते सुना, क्योंकि मेरे मन में एक बात आई थी कि मम्मा तो बाबा के आगे कभी बोलती नहीं थी, मम्मा की मुरली चलती जैसे बाबा आते मम्मा पूरा कर देती, लेकिन बाबा ने सुना और उसके बाद बाबा हॉल में आए, बहुत वरदान दिए बाबा ने। इसके बाद बाबा ने मुझे कहा बॉम्बे जाओ, और फिर मुझे उसके बाद फिर मुझे कभी अकेले कहीं जाने का मौका नहीं मिला। जो मैं अकेली आई गई वहां, उसके बाद फिर कभी नहीं मिला। लेकिन उस टाइम जितना योग किया, उस टाइम जितना बाबा को याद किया, जितना बाबा के साथ साथ कदम कदम उठाया, समझा, जितने दिन रहे बहुत खुश रहे, बड़े आनंद में रहे, दादी के साथ के अनेक अनुभव प्राप्त करते रहे खुशी में, वो सब खजाना इकट्ठा हो गया। मैं दोपहर के टाइम देखती थी सब सो गए, उठी तो देखती हूँ दादी कुर्सी पे बैठी है। दादी आप क्यों बैठे हैं, आप भी आराम करिए ना। दादी ने कहा बाबा आने वाले हैं, बाबा ने बहुत से काम लिख के भेजे हैं, ये करना ये करना ये करना, मैं याद कर रही हूँ कोई काम छूट नहीं जाए, इसलिए मैं बैठी हूँ याद कर रही हूँ। हर समय बाबा में मगन। बाबा ने क्या कहा है, वो मुझे क्या करना है, हर समय बाबा में मगन। हमने दादी को देखा, हमेशा लव में लीन। एक बाबा ने कि इतनी मदद मिली, जितनों के साथ रहे हर एक के साथ मिलकर रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम इनके साथ काम नहीं कर सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते। हर एक को अपने से बड़ा मान कर चले, हर एक को रिगार्ड दे कर चले, बस एक इतनी सी कला आ जाए, फिर हर एक को हमारे से सम्मान भी मिलेगा, हमारे से खुशी भी मिलेगी, हमारे से सहयोग भी मिलेगा, अच्छी भावना भी मिलेगी। यही विधि है कि हम हर समय खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। खुशियां बांटेंगे तभी जब हम हर व्यक्ति से महिमा के बोल बोलकर बात करें, उसी नजर से उसे देखें, उसी दृष्टि से व्यवहार करें, कोई शिकायत नहीं करें। शिकायतों की गठड़ी हमारे पास ना हो, हरे के पास रहती है बोझा उठाया हुआ है, बहुत शिकायतों का बोझा, कहते मेरा मन बड़ा भारी है, मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा भारी है, क्या है उसके अंदर, दूसरों की शिकायतें, दूसरों के किए हुए कार्य, वो सारे मैंने लाद करके रखे हैं अपने ऊपर, यही बोझ है और कोई बोझ नहीं है, क्या करें उसको, क्या करें, क्या करें, प्रभु अर्पण। एक माता जी हमारे पास आई, उसको बीमारी थी, नींद नहीं आती थी, समझा, विदेश भी गई इलाज कराने, देश में भी इलाज कराई, गोली खाती थी नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने उसको कहा तुम ब्रह्मा कुमारी दीदी के पास जाओ, वो तेरा इलाज करेगी। तो डॉक्टर के कहने से वो बहन मेरे पास आई और उसने बताया कि मुझे नींद नहीं आती है, बरसों बीत गया, मैं दिन में भी जगी रहती हूँ, रात भी जगी रहती हूँ, नींद नहीं आती, रेस्ट नहीं मिलता मुझे। मैंने उससे एक छोटी सी बात कही, मैंने कहा कि आपके कमरे में अलमारी है, अलमारी में लॉकर है, लॉकर होता है ना अलमारी में, गोदरेज की अलमारी में लॉकर होता है ना, और लॉकर में आप कीमती सामान रखते हैं, कोई टूटा फूटा डिब्बा लॉकर में नहीं ना रखेंगे, कोई टूटा फूटा कपड़ा नहीं ना रखेंगे, वैल्यूएबल चीज रखेंगे, रुपया रखेंगे, जरूरी कागज रखेंगे, है ना, जेवर रखेंगे। मैंने कहा आप पता है आपके मन में भी एक लॉकर है, जरा मुझे देखकर बताइए आपके लॉकर में क्या है, मन के लॉकर में क्या है, समझी नहीं। बोला मैं समझी नहीं आपकी बात, आप क्या बोल रहे हैं। मैंने उसे बताया जब किसी के व्यवहार से बहुत दुख होता है तो क्या कहते हैं, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते इनका व्यवहार, हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, ऐसे ऐसे शब्द लोग बोलते हैं। कहाँ रख दिया उसको, कहाँ रख दिया, मन के लॉकर में। खुशी मिली, सुख मिला, घूमने फिरने को मिला, धन मिला, खाया पिया सब कुछ भूल गया, वो याद नहीं रहता, कल परसों क्या खाया याद नहीं रहेगा, आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन कल परसों किसी ने कुछ कह दिया, वो सोचना नहीं पड़ेगा, वो याद है, उसको फ्रेश करते रहते हैं, बार बार याद करके उसको फ्रेश करते रहते हैं। मैंने उसे बताया कि मन के लॉकर में जितनी बातों से दुख हुआ, ज्यादा से ज्यादा जिस बातों से दुख हुआ वो सारा मन के लॉकर में रख दिया। माना मन का लॉकर कचड़े से भरा हुआ है, अलमारी के लॉकर में कीमती सामान है, समझ रहे हैं हमारी बात, मन के लॉकर में कचड़ा भरा हुआ है, अब कचड़ा अब फुल हो गया, भर गया लॉकर, भर गया, अब क्या हुआ, बदबू हो गई, कचरा इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, बदबू हो गई, और उसे जर्म्स पैदा हो गए, और जर्म्स काट रहे हैं, नींद कैसे आएगी समझ गए। अब मैंने कहा लॉकर खाली करो, लॉकर खाली करो तो आपको नींद आ जाएगी। फिर पूछने लगी कैसे खाली होगा, विधि बताइए, पहले लॉकर भरा हुआ है ये तो समझ में आ गया, हाँ है भरा हुआ, मेरा अब उसमें बदबू आ रही है, उसमें जर्म्स पैदा हो गए और वो काट रहे हैं। मैंने कहा मेडिटेशन रूम में जाओ, पहला दिन आई थी, कोई ज्ञान सुना हुआ नहीं था, मैंने कहा मेडिटेशन रूम में बैठ जाओ और याद करो क्या क्या बातें हैं उस लॉकर में रखी हुई, एक एक बात को याद करो, और जिस व्यक्ति से आपको दुख हुआ उसको माफ कर दो, माफ करो, उसकी भलाई के लिए नहीं अपनी भलाई के लिए। एक एक को माफ करते जाओ, लॉकर खाली होता जाएगा, समझा। और जिसको आपने दुख दिया, बदला लिया, उसे आप माफी मांग लो। ये सारा काम आप मेडिटेशन रूम में बैठ के करो। तो मेडिटेशन रूम में गई, 15-20 मिनट बैठी, जरूर कुछ किया ही होगा समझा। घर गई, अपने नजदीक रिश्तेदारों को फोन करके सुनाई कि आज दीदी ने मुझे ये बातें समझाई है। रात्रि को भोजन किया, गोली जल्दी नहीं खाती थी क्योंकि नींद तो आती नहीं थी, भोजन किया, जाकर के लेट गई, लेट गई, थोड़ी देर के बाद नींद आ गई। सुबह उठी, पहला फोन हमको किया, दीदी आज बहुत समय के बाद मैं आज सोई हूँ, गोली खाई होगी? नहीं नहीं आज मैं गोली खाई नहीं। तो लॉकर खाली किया होगा। फिर वो हमारे पास आई, रोज उसको कहते थे जितना कुछ आपके लॉकर में है पूरा खाली करो। फिर उसने 7 दिन का कोर्स किया, फिर नींद आने लगी और बीमारियां भी ठीक होने लग गई। बाबा ने ऐसी खुशी की खुराक खिलाई है, खुशी की खुराक खिलाई है ना, याद करो मैं खुश नसीब हूं, खुशी की खुराक खाने वाला हूं। बाबा ने खुशी का खजाना दिया है, ऐसी खुशी की खुराक बाबा ने खिलाई है कि हमारे तन में भी बीमारी नहीं आ सकती, मन भी सदा फ्रेश, सदा खुश, सदा लाइट। दूसरे की बातों को याद करेंगे भारी होगा। मैं आपको क्यों सुना रही हूं, आप भी अपना लॉकर चेक करो। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं सभी, आप सभी भी अपना लॉकर चेक करो। यहां पर लॉकर खाली करके जाना है, मन के लॉकर में एक ही चीज भरी हो, बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बस और कुछ नहीं। वो मन का लॉकर खुशियों से भरा हो तो क्या होगा, तन में कोई रोग होगा वो भी ठीक हो जाएगा, तन का रोग भी मिट जाएगा, मन भी खुशहाल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा। खुश नसीब हैं, खुशनुमा हैं, खुशी की खुराक खाने वाले हैं, खुशियां बांटने वाले हैं, ये हमारा परिचय है, समझ गए? मैं खुश नसीब हूं, खुशनुमा हूं, खुशी की खुराक खाते हैं, खुशी औरों को खिलाते हैं, यही हमारा परिचय है। ज्ञान भी सुना रहे हैं तो खुशी से। इस तरह बाबा ने कहा है, बच्चे हर पल सुख में बिताओ, हर पल खुशी में बिताओ, हर पल आनंद में बिताओ। बीती बातें याद रहेगी तो आनंद नहीं आएगा, वो भूलने से आएगा। हमें बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने दी है, उस शक्ति का नाम क्या है, भूलने की शक्ति। आज लोगों को कहो एक बात भूल जाओ, भूल नहीं सकते। हमें कहा है सिर्फ प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट शब्द के 3 मीनिंग याद रखना, प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम है ना, प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहो। लोग प्रेजेंट टाइम में एब्सेंट हो जाते हैं, बैठे यहां है मन बुद्धि कहीं और। प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट रहो और जो भी मिले उसे कुछ प्रेजेंट जरूर दो, कोई ना कोई वरदान का प्रेजेंट दो। आप खुश नसीब हैं, आपके सिर पर भगवान का हाथ है, आपके साथ है, कदम कदम पर गाइड कर रहा है, और क्या चाहिए। ठीक है, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो हमारा हमारा। का मिला सहारा, हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हो गया हमारा हमारा। हमारा।